Shalom, Vishwapad, Prabhupada, Jwanga, Shri Maitreya, Bhakti, Nanda Swami, Shri Prabhupada, Maharaj ki, Jai, Shri Prabhupada ki, Shri Shri Gonitai ki, Shri Shri Radha Raj Bhai Lata Vishaka ki, Shri Shri Sita Ram Nakran Hanuman ki, Samkirtan Yajna ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glory to Sri Guru and Sri Gauranga. Should the class be in English or Hindi? English. Kitne bhakt hain jinhe angrezi samajh nahi aati? So jinko angrezi samajh nahi aati, wo piche baith sakte hain. Look at the mother. What should the class be in? With a Jagat Purush decide.
I think Hindi.
So, Hindi? Or if it's speaking English? Here it was speaking in Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. There are quite a few people who don't understand English. So, okay, since Jagat Purush said do in Hindi, I'll do it in Hindi. Om Agyat Mirandasya Gyananjana Shalakya. Shri Chaitanya Manovistam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. तो आज आप जानते हो एक महान संत का तिरुभाव तिथि है. क्या नाम है? तो संक्षेप में हम लोजिंदास की चर्चा करेंगे, उसके पश्चात भागवतम का श्लोक. तो लोजिंदास ठाकुर आविर्भाव तिरुभाव. आविर्भाव का अर्थ है जब कोई महान संत प्रकट होता है. तिरुभाव का अर्थ है जब वो प्रकट होता है. तो हम आविर्भाव और तिरुभाव दोनों को ही उत्साह से मनाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम इन संतों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. और जितना हमारा मन संतों का चिंतन करेगा, उतनी तेजी से ही आप आध्यात्मिक उन्नति कर पाओगे. तो लोचनदास ठाकुर पृथ्वी पर थे लगभग 500 साल पूर्व, और वो थे नारायणी सरकार के शिष्य. लोचनदास ठाकुर बचपन से ही महाप्रभु के भक्त थे, और बचपन से ही केवल उनके मन में यही भाव था, महाप्रभु और भगवान नित्यानंद का गुणगान. तो बचपन से ही उनकी रुचि थी आध्यात्मिक कार्यों में. तो लोचनदास ठाकुर छोटी आयु में ही उनका विवाह हो गया था, पर उन दिनों में छोटी आयु में विवाह होता था, फिर लड़की वापस अपने माँ बाप के घर में जाती थी। तो लोचनदास ठाकुर की भौतिक कार्य में कोई रुचि नहीं थी, तो उनके माँ बाप लड़की के उनके गुरु के पास गए और कहा कि आपके शिष्य ने शादी की थी और गुरु ने वो पत्नी को साथ नहीं रखा। तो गुरु ने कहा नरोत्तम लोचनदास से जाओ पत्नी के पास। तो लोचनदास को याद नहीं था उस स्थान में कैसे पहुंचा जाए। तो जब वो उस गांव में पहुंचा जहाँ की उनकी पत्नी रहती थी, तो वहाँ उन्होंने पूछा एक औरत से, माता इस पते पर मैं कैसे पहुँचूँगा। और जब वो उस स्थान में पहुँचे तो देखा कि वही औरत जिससे उन्होंने रास्ता पूछा था उनकी पत्नी थी। उन्होंने पत्नी को माता के रूप में स्वीकार किया। तो लोचनदास ठाकुर की अनेक रचनाएं हैं और लोचनदास ठाकुर ने हमें कई ग्रंथ किए हैं, जिनमें एक सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है चैतन्य मंगल। वृंदावनदास ठाकुर ने हमें चैतन्य भागवत दिया है, तो ये चैतन्य भागवत पहले उन्होंने रचना की थी चैतन्य मंगल के रूप में। और फिर जब उन्हें पता लगा कि लोचनदास ठाकुर ने इसी ग्रंथ को चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को प्रकाशित किया है चैतन्य मंगल के नाम पर, तो उन्होंने फिर नाम बदलकर चैतन्य भागवत कर दिया। तो चैतन्य मंगल में अनेक लीलाओं का वर्णन है, जिनका वर्णन ना चैतन्य चैतन्य में है और ना चैतन्य भागवत में। उदाहरण के लिए दो लीलाएं हैं जिनको आप चैतन्य मंगल में प्राप्त करते हो, जो कि दूसरी लीलाओं में दूसरे ग्रंथों में नहीं है। जब महाप्रभु छोटे थे तो अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे और वहाँ अनेक पिल्ले थे, पपी डॉग। हाँ, तो निमाई ने जो सबसे खूबसूरत पपी डॉग था पिल्ला उठाकर घर ले आए। माँ ने कहा वी आर ब्राह्मण्स, हम ब्राह्मण हैं, घर में पिल्ला नहीं ला सकते। निमाई ने कहा अगर आप पिल्ले को घर में नहीं रहने दोगे तो मैं भी घर में नहीं रहूंगा। तो माँ के पास कोई उपाय नहीं था। एक दिन निमाई जब गंगा में गए थे स्नान करने के लिए, उनकी माँ ने पिल्ले को छोड़ दिया, बांधा हुआ था घर में। तो निमाई को उनके मित्रों ने आके कहा निमाई निमाई, तुम्हारी माता ने तो वो पिल्ले को छोड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया। निमाई बड़े क्रोधित हुए, मित्रों को कहा जाओ ढूंढो कहाँ है ये पिल्ला। और फिर उन्होंने देखा क्या पिल्ला नवदीप के शहर के बीच में दो पैरों से नाच रहा था, दो हाथों को उठाकर क्या कर रहा था, हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण, और आंसू बह रहे थे और सबके सामने एक रथ आया भगवान के धाम से। वो रथ आया किया करने उस पिल्ले को भगवान के धाम वापस ले जाने के लिए। वो पिल्ला उस रथ में बैठकर बाय बाय करते भगवान के धाम पहुंच गया। तो ये रचना चैतन्य मंगल में है। तो अगर कोई कहे कि भाई ने पिल्ला रखा हम भी रख सकते हैं, तो आपको गारंटी देना पड़ेगा कि आप उसे हरे कृष्ण मंत्र रचाओगे और शुद्ध भक्त बनाओगे, नहीं तो नहीं। तो निमाई संन्यास लेकर जा रहे थे जगदलपुरी मंदिर की तरफ और उन्हें प्यास लगी थी। एक व्यक्ति मटके में लस्सी बेच रहा था। निमाई को इतनी प्यास लगी थी, निमाई ने कहा अब लस्सी चाहिए। तो पूरा मटका निमाई पी गया, पूरा मटका। फिर उसने कहा पैसा, और निमाई ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पीछे मेरे मित्र आ रहे हैं, वो पैसा देंगे। तो थोड़ी देर बाद भगवान नित्यानंदा वहाँ पहुँचे अपने साथियों के साथ। तो उस लस्सी वाले ने कहा तुम्हारा एक सन्यासी आया था, लस्सी पी गया और कहा कि तुम पैसे दोगे। तो भगवान नित्यानंदा ने कहा हमारे पास भी पैसे नहीं है। तो उस लस्सी वाले ने कहा अच्छा ठीक है, उस सन्यासी को कह देना मैंने वो लस्सी दान में दे दी, मैं अभी घर चलता हूँ। तो मटका खाली हो गया था, उठाकर घर जा रहा था। जब मटका उठाने गया तो मटका इतना भारी था कि वो उठा नहीं पाया। तो आश्चर्यचकित हो गया था युवक, ये खाली था मटका, अभी भारी, इतना भारी कैसे हो गया। तो उसने अंदर देखा क्या है, वो जब खोला और देखा क्या, हीरे मोती सोने से भरा हुआ था मटका। तो उसने भगवान को थोड़ी लस्सी दी और बदले में क्या मिल गया, पूरा मटका भर गया। तो भगवान की सेवा करके कोई गरीब नहीं होता। तो चैतन्य मंगल में अनेक लीलाएं हैं और निमाई ने और गोचिंदास ने हमें गुरु से प्रार्थना की थी कि वो बड़े अच्छी तरह भगवान नित्यानंदा का गुणगान कर सकें, क्योंकि अनेक लीलाएं हैं, कथाएं हैं उन्हें। और एक उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है परमा करुणा। प्रभुपाद जी ने इस प्रार्थना के ऊपर बहुत लंबा कमेंट्री दिया हुआ है। और प्रभुपाद जब ये परम करुणा गाते थे तो उनके नेत्रों से आंसू बहते थे कई बार। तो मैं अनुवाद ही पढ़ता हूँ। ये जो दो भगवान हैं, भगवान नित्यानंदा गौरचंदा, ये बड़े दयालु हैं। ये हैं सारे अवतारों के सबसे दयालु अवतार। इस प्रकार गौरचंदा ठाकुर जी क्या कहते, आप सब अवतारों में सबसे दयालु हो। और उन्होंने एक बहुत सरल माध्यम दिया है, किसका, भगवत प्राप्ति का। वो माध्यम क्या है, हरे कृष्ण मंत्र का चैंटिंग और नाचना, गाना और नाचना, ये हम लोग का मेन काम। कीर्तन करो, नाचो, भूख लग जाए तो फिर क्या करो। हे मेरे भाई, मैं तुम्हारे से विनती करता हूँ कि भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंदा जी की सेवा करो श्रद्धा के साथ और पूरे विश्वास के साथ। इसका क्या अर्थ, ये श्रद्धा रखो कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहि आनिया। राधा और कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और भगवान नित्यानंदा कौन है, भगवान नित्यानंदा भगवान के साथी हैं सनातन। जब भगवान राम प्रकट हुए थे तो यही नित्यानंद प्रकट हुए थे, किस रूप में? लक्ष्मण के रूप में, छोटे भाई के रूप में। जब भगवान प्रकट हुए अपने कृष्ण भगवान के रूप में, यही प्रकट हुए बड़े भाई बलराम के रूप में। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, यही प्रकट हुए भगवान नित्यानंद के रूप में। भगवान नित्यानंद महाप्रभु से लगभग 12 साल आयु में बड़े थे। तो ये कह रहे हैं, तुम श्रद्धा से ये स्वीकार करो कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद कौन है? स्वयं भगवान है। अगर तुम कृष्ण भक्ति में सफलता चाहते हो तो एक चीज तुम्हें त्यागना पड़ेगा। ये मत सोचो कि वो त्यागे बगैर भगवान का प्रेम मिलेगा। क्या है वो? क्या त्यागना पड़ेगा? भौतिक आकर्षण। जब तक तुम भौतिक आकर्षण को नहीं छोड़ोगे, इंद्रिय तृप्ति के भावों को नहीं छोड़ोगे, तो मैं भगवान नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी। और व्यक्ति को निष्काम भाव से हरे नाम का उच्चारण करना चाहिए। कृष्ण भक्त निष्काम आते व शंता भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली। जो भक्त निष्काम भाव से सेवा करते हैं वो हमेशा शांत रहते हैं, और जो कि भावों के साथ करते हैं वो सदा अशांत रहते हैं। तो कहते हैं यहाँ, निष्काम भाव से महामंत्र का उच्चारण करो। वैसे तो भगवद गीता के सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं, चार परिस्थितियों में लोग मेरे ईश्वर में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम। क्या है? एक, जैसे धन चाहिए। दूसरा, जिज्ञासु, रोगी, पीड़ित, ज्ञानी। भगवान कहते हैं ये सब पुण्यात्मा है, पर इन सब में सबसे शुद्ध कौन है? जो निष्काम भाव से ये हरि नाम का उच्चारण करता है। तो यही विचार प्रकट कर रहे हैं कि हमें निष्काम भाव से महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और ये तीन लोकों में भगवान नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु के बराबर के कोई नहीं है। वो इतने दयालु हैं और उनके उपदेश सुनकर जो पशु हैं, चिड़िया हैं, पक्षी हैं, वो भी महामंत्र का उच्चारण करते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड जंगल से जा रहे थे तो जो पशु हैं उनसे भी उन्होंने क्या करवाया? हरे कृष्ण कीर्तन करवाया। और चैतन्य में देवन दी बोध दी एलिफेंट लायन चैंट हरे कृष्ण। लोचनदास कहते हैं, ये है भगवान के भक्तों की विनम्रता। वो कहते हैं, मैं इंद्रिय तृप्ति में जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मेरा आकर्षण भगवान के प्रति बहुत कमजोर है। और मैं यमराज जी से प्रार्थना करता हूं कि मुझे कृपा दे कि मैं नित्यानंद और आप प्रभु के प्रति आकर्षित हो जाऊं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वास्तविकता में लोचनदास ठाकुर माया में थे, ये उनकी विनम्रता है। हमारे संतों में इतनी विनम्रता है कि वो कहते हैं, हमारा नाम ही मत लो, नाम ही लोगे तो तुम्हारे सारे गुण समाप्त हो जाएंगे। तो इसी भाव से, इसी विनम्रता के भाव से लोचनाथ ठाकुर क्या कह रहे हैं, मैं कि मेरे में भौतिक आकर्षण है इसलिए मैं भगवान के प्रति आकर्षित नहीं हो रहा, पर वो कहते हैं अपने गुरु से कृपा दीजिए मुझे कि मेरा आकर्षण बढ़े भगवान के प्रति। तो लोचनाथ ठाकुर ने अनेक रचनाएं की हैं जिनमें भगवान नित्यानंदा और चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया जा रहा है। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है, हमें लोचनदास ठाकुर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भक्ति में आगे बढ़ें और हम भी महाप्रभु और नित्यानंदा के आदेश के अनुसार क्या करें, महिना में रुचि बढ़ाएं। लोचनदास ठाकुर की हो प्रभु नंदा। फिर आज का श्लोक श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 10 चैप्टर 2 श्लोक 37 समय का भाव है, तुम सीधा अनुवाद और तात्पर्य में जाते हैं।
अनुवाद
है बहु, जो सो रहे हैं उन्हें उठ जाना चाहिए। ओके, विषय समय वॉक अराउंड विद वाटर स्प्रिंकलर। ओके,
हरे अनुवाद। विविध कार्यों में
शब्दार्थ
श्रृण्वन निरंतर भगवान के विषय में सुनते हुए श्रवणम कीर्तनम विष्णु ग्रणन कीर्तन करते हुए या सुनाते हुए संस्मर्यम स्मरण करते हुए भगवान के चरण कमलों तथा उनके स्वरूप के विषय में निरंतर चिंतन करते हुए च तथा चिंतयन चिंतन करते हुए भगवान के कार्यकलापों का नामानी उनके दिव्य नाम रूपाणी उनके दिव्य स्वरूप च भी मंगलानी दिव्य होने से शुभ ते आपके क्रियासु भक्ति में लगे रहने पर यह जो त्वचरणारविंदयो आपके चरण कमलों पर आविष्ट चेतः पूर्णतया लीन रहने वाला भक्त न नहीं भवाय भौतिक पद के लिए कल्पते योग्य है। अनुवाद। विविध कार्यों में लगे रहने पर भी जिन भक्तों के मन आपके चरण कमलों में पूरी तरह लीन रहते हैं और जो निरंतर आपके दिव्य नामों तथा रूपों का श्रवण कीर्तन चिंतन करते हैं तथा अन्यों को स्मरण कराते हैं वे सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं और इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं।
दोहराइए अनुवाद।
अनुवाद दोहराइए। विविध कार्यों में लगे रहने पर भी जिन भक्तों के मन आपके चरण कमलों में पूरी तरह लीन रहते हैं और जो निरंतर आपके दिव्य नामों तथा रूपों का श्रवण कीर्तन चिंतन करते हैं तथा अन्यों को स्मरण कराते हैं वे सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं और इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं।
प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस श्लोक के तात्पर्य के समाप्ति में प्रभुपाद ग्रंथों की महिमा का की चर्चा करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा।
इस श्लोक में बतलाया गया है कि भक्ति योग का किस तरह अभ्यास किया जा सकता है। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि जिस किसी ने मन से, वचन से तथा कर्म से, कर्मणा मनसा गिरा, भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है, वह चाहे जीवन की किसी भी स्थिति में क्यों न हो, वह बद्ध न रहकर मुक्त हो जाता है। ऐसा भक्त भौतिक शरीर धारण करते हुए भी अध्यात्म में स्थित होता है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विभ्यति, दिव्य कार्यों में लगे रहने के कारण वह भौतिक देहधारी बनने से भयभीत नहीं रहता। इस जीवन मुक्त अवस्था का दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की है, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहितुकी त्वयि। मैं तो जन्म जन्मांतर केवल आपकी अहितुकी भक्ति की कामना करता हूं। यदि भगवान की इच्छा से कोई भक्त इस भौतिक जगत में जन्म लेता भी है तो भी उसकी भक्ति में अवरोध नहीं आता। जब राजा भरत से भूल हो गई और अगले जन्म में वे हिरण बन गए तो उनकी भक्ति में अवरोध नहीं आया, यद्यपि उन्हें उपेक्षा के लिए थोड़ा दंड मिला। नारद मुनि कहते हैं कि यदि कोई भक्ति पथ से च्युत भी हो जाता होता है तो उसका विनाश नहीं होता, किंतु अभक्तों का सर्वनाश हो जाता है क्योंकि वे भक्ति नहीं करते। इसलिए भगवद गीता में संस्तुति की गई है कि मनुष्य को चाहिए कि कम से कम हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन तो किया करे। सततम कीर्तयन्तो माम यतंस्य दृढ़ व्रता नमस्यंस्य माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। महात्मा लोग सदैव मेरे यश का कीर्तन करके दृढ़ संकल्प पूर्व प्रयास करके मेरे समक्ष नतमस्तक होकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि 9 प्रकार के भक्ति योग का परित्याग न करें। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण विधि है गुरु साधु तथा शास्त्र से श्रवण करना। साधु शास्त्र गुरु वाक्य चितेते करियाइक्य। हमें अभक्तों की टीकाएं तथा व्याख्याएं नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि श्रील सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण से उद्धरण देते हुए इसका निषेध किया है। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथा अमृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथापयः। हमें चाहिए कि दृढ़ता पूर्वक इस आदेश का पालन करें और मायावादियों, निर्विशेषवादियों, शून्यवादियों, राजनीतिज्ञों अथवा तथाकथित विद्वानों से श्रवण करने का प्रयास न करें। हमें ऐसे अशुभ संग से पूरी तरह बचते हुए शुद्ध भक्तों से ही सुनना चाहिए। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है श्री गुरु पादाश्रयः, अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह शुद्ध भक्त के चरण कमलों की शरण खोजे, क्योंकि वही गुरु बन सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि जो भगवद गीता के आदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है वही गुरु है। यारे देखा तारे कह कृष्ण उपदेश। वाव दुख या मदारी या जादूकर कभी गुरु नहीं होता। गुरु तो वह है जो भगवद गीता प्रस्तुत करता है। कृष्ण के उपदेशों को यथा रूप में प्रस्तुत करता है। श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है, अतः वैष्णव साधु गुरु तथा शास्त्र से ही श्रवण करना चाहिए। इस श्लोक का क्रियासु शब्द महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है शारीरिक श्रम द्वारा या कार्य द्वारा। मनुष्य को भगवान की व्यवहारिक सेवा करनी चाहिए। हमें कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में हमारे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में हमारा सारे कार्य कृष्ण साहित्य के वितरण पर केंद्रित रहता है। यह अत्यावश्यक है किसी के पास भी पहुंचकर उसे कृष्ण साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जिससे भविष्य में वह भक्त बन सके। इस श्लोक में ऐसे ही कार्यों की संस्तुति की गई है। क्रियासु यस्त्व चरण चरणारविंदयो, ऐसे कार्य भक्त को भगवान के चरण कमलों की का सदा स्मरण दिलाते रहेंगे। कृष्ण विषयक पुस्तकों के वितरण में चित्त एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण में लीन रहता है, यही समाधि है।
हरे कृष्ण। ये श्लोक भागवतम के 10वें स्कंध के दूसरे अध्याय में प्राप्त होता है, और यदि इस अध्याय में आप देखते हो कि जो देवता थे उन्हें पता लग गया था कि परम भगवान अभी प्रकट होने वाले हैं, और परम भगवान कहाँ हैं, देवकी के घर में। जब देवताओं को पता लगा कि भगवान प्रकट होने वाले हैं, और भागवतम के अगले अध्याय में आप पढ़ोगे किस प्रकार भगवान प्रकट हुए अपने दिव्य रूप में, चार हाथों के साथ, गहनों से सजा हुआ था पूरा शरीर। माता पिता को भगवान यकीन दिलाना चाहते थे अब मैं प्रकट हो गया हो, डरो मत। और जब माता पिता ने कहा, उन्हें भय था कि कम से कम सूचना नहीं मिल जाए, तो उन्होंने कहा आप साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लो। तो तुरंत ही उन्होंने क्या किया, साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लिया। तो जो देवता थे बड़े प्रसन्न थे परम भगवान प्रकट होने वाले हैं, और इन स्तुतियों में देवता परम भगवान के अनेक गुणों का वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में आप देखते हो जो भक्त हैं सदा परम भगवान का गुणगान करते हैं, दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड। आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं देवता, सबसे पहले तो ये कह रहे हैं जो भगवान के भक्त हैं उन्हें कार्य में जुड़े रहते हैं। ये नहीं कि हम भगवान के भक्त हैं तो कोई कार्य नहीं करेंगे, हम विश्राम करेंगे, प्रसाद खाएंगे, फिर विश्राम करेंगे। यहाँ कह रहे हैं भगवान के जो भक्त हैं अनेक कार्यों में जुड़े रहते हैं, पर साथ में मन द्वारा क्या करते हैं, भगवान के चरण कमलों का स्मरण, और निरंतर भगवान के नामों को सुनते हैं, उच्चारण करते हैं, और दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए। और ऐसे व्यक्ति परम भगवान को सुन समझ सकते हैं। भगवान ने अर्जुन से गीता में क्या कहा, अर्जुन की इच्छा थी कि युद्ध में नहीं लड़े। अर्जुन ने कहा इन लोगों को मैं इतना आदर देता हूँ, मैं कैसे युद्ध में लड़ सकता हूँ। तो भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कलेषु मम मनसः युद्धश्च मयि अर्पिता मनोबुद्धिः। मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए तुम अपना कर्तव्य निभाओ। उनका कर्तव्य क्या था? क्षत्रिय के रूप में युद्ध में लड़ना। तो तो भगवान ये नहीं कह रहे तुम कुछ मत करो, करो युद्ध में लड़ो और मन और बुद्धि द्वारा क्या करो, मेरा चिंतन करो। रूप गोस्वामी की रुचि नहीं थी सरकारी नौकरी करने के लिए। रूप उनके भाई सनातन को जबरदस्ती नवाब हुसैन शाह ने जोड़ दिया था नौकरी में। तो चैतन्य महाप्रभु इन दो भाइयों के उद्धार के लिए रामाकेली आए थे। रामाकेली इस समय बांग्लादेश में है। तो क्योंकि वो बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे तो अपने आप को ढककर रात के समय महाप्रभु को मिलने आए। और रूपा गोस्वामी ने कहा, मेरी कोई रुचि नहीं है सरकार की नौकरी करने में, मुझे आप आदेश दीजिएगा कि मैं इस नौकरी को त्याग सकूं। और महाप्रभु ने कहा, उन्होंने एक उदाहरण दिया और प्रभुपाद जी इस उदाहरण का उपयोग करते हैं भगवद गीता की भूमिका में। महाप्रभु ने कहा, तुम इस समय मत छोड़ो और जिस प्रकार एक विवाहित स्त्री का अगर कोई प्रेमी हो बाहर से तो बड़े सावधानी से कार्य करेगी पर मन में ये सोचते रहेगी कि अपने प्रेमी को मिलने कब जाऊंगा जाऊंगी। तो ये उदाहरण दिया महाप्रभु ने ये बताने के लिए, तुम इस तुम्हारी नौकरी है करते जाओ पर मन द्वारा सदा क्या सोच लो, मन द्वारा भगवान का चिंतन करते रहो। तो यही भाव भगवान ने अर्जुन को दिया था, यही आदेश भगवान ने अर्जुन को दिया था, यही भाव यहाँ प्रकट हो रहा है। देवता कह रहे हैं, जो व्यक्ति आपके सेवा में जुड़े हैं वो अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। ये नहीं कि आप भगवान की सेवा में जुड़े हो तो अनेक प्रकार के कार्य नहीं करो, पर कार्य करते समय मन द्वारा हमें क्या करना चाहिए, भगवान का चिंतन और श्रवणम और कीर्तनम, भगवान के नामों को सुनो, भगवान के नामों का उच्चारण करो। तो ये है भक्तियों का साधन। अभी हमने कुछ समय पहले लोचनदास ठाकुर की के विषय में चर्चा की थी। लोचनदास ठाकुर अभी रचनाओं में यही इसी विषय को की स्थापना कर रहे हैं कि अगर हमें असली सुख चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान के नामों का उच्चारण या श्रवणम और कीर्तनम। इस विषय के ऊपर आप देखते हो बार बार इस विषय की चर्चा की जाती है। अगर हमें आध्यात्मिक उन्नति चाहिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देवता कह रहे हैं, आपके जो भक्त हैं वो अनेक प्रकार के कार्य में जुड़ते हैं, जैसे कि हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार समाज का विभाजन किया जाता है चार वर्णों और चार आश्रम में। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी आश्रम में उनका कर्तव्य रहता है कि भगवान की सेवा करें, सारा जीवन बिताएं आश्रम में रहे। और गृहस्थ गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति धन कमाने के लिए कार्य करता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है। जो स्त्री हैं वो घर में कार्य करते हैं, पर साथ उनका भाव होना चाहिए इस सेवा की। एक कार्य कर रहे हैं हम किस लिए? भगवान की खुशी के लिए। तो ये संभव केवल जब हो पाएगा जब आप भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हो और इस उच्चारण को सुन रहे हो और साथ में भगवान की अनेक लीलाओं का स्मरण। तो नवदा भक्ति का ज्ञान हमें बार बार दिया जाता है। ये नहीं कि ये पहला श्लोक है जिसमें ये भाव प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवतम के 10वें स्कंद में आप पहुंचे हो इस समय, पर प्रथम स्कंद में भी इसी विषय का वर्णन किया गया है। बार बार क्यों इस विषय की चर्चा की जाती है? इसलिए कि आप बार बार सुनोगे तो शायद आपके हृदय में टिक जाएगा। पर हम क्या देखते हैं, बार बार सुनने से भी नहीं टिकता, तो बार बार सुनना चाहिए। तो श्रवणम और कीर्तनम, जब प्रहलाद महाराज से उनके पिता ने पूछा, बेटा तुमने क्या सीखा पाठशाला में, तुम्हारे अध्यापक के लिए अनेक विषयों की चर्चा की, सबसे प्रसिद्ध क्या था? उन्होंने नवदा भक्ति का वर्णन किया। तो जो व्यक्ति भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है और सुन रहा है, और वो फिर चिंतन भी कर पाता है भगवान के विषय में। चिंतन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान गीता के अंत में क्या कह रहे हैं? मन मन अभाव मद भक्तो मध्या जी मन नमस्कार। मन में भाषे सत्यम से प्रति जने। जो व्यक्ति मन द्वारा मेरा भक्त बनता है, मेरा चिंतन करता है, मेरा स्मरण करता है, मुझे प्रणाम करता है, बिना शंका के वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? मेरे धाम में आएगा। तो विष्णु स्मरणम, जिसका अर्थ है भगवान का चिंतन करना, ये संभव है केवल अगर हम श्रवणम कीर्तनम भी ध्यान से करें। इसलिए नवदा भक्ति आरंभ होता है किस के साथ? श्रवणम और कीर्तनम और उसके पश्चात विष्णु स्मरणम। तो श्रवणम कीर्तनम बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, भौतिक संसार में हम सब एक रूप से श्रवणम कीर्तनम करते रहते हैं, कुछ न कुछ हम सुनते रहते हैं, पर इन चीजों का कुछ लाभ नहीं। हमें सुनना चाहिए क्या? भगवान के नामों का उच्चारण। भगवान के नामों के उच्चारण के विषय में कई बार भौतिकवादी व्यक्ति कहते हैं, तुम लोग एक ही नाम का उच्चारण बार बार करते हो, थकते नहीं, तो क्या है इसका उत्तर? नहीं थकते। क्यों? क्यों नहीं थकते? क्योंकि भगवान के नाम अभिन्न है। आप भगवान के नामों का उच्चारण दिन भर कर सकते हो और थकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि नाम भगवान ने नामों में पूरी शक्ति डाली है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में कलियुग के लक्षणों का ज्ञान प्राप्त होता है। अगर आप ये 12वें स्कंद को पढ़ोगे आज, तो आपको ऐसे लगेगा कि इसकी रचना कल हुई थी, 5000 साल पूर्ण है। क्यों? क्योंकि इतने जो भविष्यवाणी थी वो आज सत्य निकल रही है। तो भगवतम के 12वें स्कंद में परीक्षित महाराज ने फिर से पूछा, कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो क्या शुक्र गोस्वामी ने कहा, कृते अध्याय तो विष्णु चेतयो यजितो मुखे द्वापर परिचर्यायाम करतधारी कीर्तन। जो लाभ सत्ययुग में प्राप्त होता था भगवान का चिंतन करके, जो लाभ त्रेतयुग में प्राप्त होता था बड़े बड़े यज्ञ करके, जो लाभ द्वापर युग में प्राप्त होता था भगवान के चरणों की चरणों में महंगी भेंट अर्पण करके, वही लाभ इस कलयुग में प्राप्त हो सकता है। किस माध्यम के द्वारा? राम के द्वारा। नवश्राण्य में संतों की सभा चल रही थी, संतों की चिंता थी किस प्रकार लोगों का उद्धार होगा। और जो संत हैं वो सदा यही सोचते हैं समाज का उद्धार कैसे हो। तो वहाँ उन्होंने ये निर्णय किया कि कलयुग में क्या लोगों की आध्यात्मिकता में बहुत कम रुचि होगी, लोग झगड़ेलू होंगे, आध्यात्मिकता में बहुत कम रुचि होगी और दुर्भाग्यशाली होंगे। तो कलयुग के जो लक्षण हैं उनका, उनके विषय में आप भगवतम में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो ये कहा गया है कि इस हरि नाम के द्वारा वही लाभ प्राप्त होगा जो दूसरे युगों में दूसरे साधनों से प्राप्त होता था। वो आगे भागवत में ये भी कहा गया है, कले दो से दे राजन, हे राजा कलयुग में क्या है? क्या है? अस्थि का महागुना, पर एक गुण है इस कलयुग में, क्या है? कीर्तन देव कृष्ण, कृष्ण का कीर्तन। और इसे क्या परिणाम होता है? मुक्त संग से परम जन, जिसके द्वारा आप भगवान के धाम लौट सकते हो। तो इसी विषय की वर्ण, इसी विषय की चर्चा आज के श्लोक में भी की जा रही है। यहाँ देवता कह रहे हैं, हे परम भगवान, जो व्यक्ति, चाहे व्यक्ति किसी प्रकार के कार्य में जुड़ा हो, अगर वो अपने जीभ द्वारा आपका उच्चारण कर रहा है, कानों द्वारा आपका उच्चारण सुन रहा है और मन द्वारा आपके अनेक लीलाओं का चिंतन कर रहा है, वो व्यक्ति बिना शंका के आपको समझ पाएगा। तो भगवान को समझने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? धन की? भौतिक ज्ञान की? खूबसूरती की? नहीं। सेवो मुके है जीव दो स्वयं में मसूरा देना, सेवा की माने। और सेवा आरंभ होती है श्रवणम कीर्तनम के द्वारा। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और हरि नाम का उच्चारण आप किसी स्थिति में भी कर सकते हो, पर अगर हम अपराधों से रहित ध्यानपूर्वक हरि नाम को जाप करें तो इसके द्वारा क्या लाभ मिलेगा, क्या क्या होता है जिसके माध्यम से आप भगवान को समझ सकते हो। क्योंकि जब आप मां मंत्र का उच्चारण करते हो, जो हमारे हृदय में गहरी मैल है, प्रभुपाद जी कह रहे थे हमारा हृदय कोले से भी ज्यादा काला है। कोला मन लगन कितना काला होता है, क्योंकि हमारे हृदय में अनेक प्रकार के भौतिक इच्छाएं हैं, और इन इच्छाओं को दूर करने के लिए क्या है उपाय, ये महामंत्र उच्चारण। तो तात्पर्य में भी प्रभु जी यही कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को समर्पण किया है भगवान की सेवा में, जो भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है, वो व्यक्ति चाहे भौतिक जगत में हो पर भौतिक जगत से मुक्त माना जाता है, क्योंकि वो तन मन धन से क्या कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है। परीक्षित महाराज को एक बार श्रृंगी ने श्राप दे दी थी, क्यों, इस ब्राह्मण बालक ने देखा कि इस राजा ने, राजा जंगल में था, प्यासा था, पानी की खोज में एक संत की कुटिया में पहुंचा, संत को राजा का स्वागत करना चाहिए था, ये राजा राज ऋषि थे, उस संत ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, राजा ने अपमान महसूस किया और निकलते समय एक मरे हुए सांप को हार के रूप में चढ़ा दिया। तो जब इस संत के बेटे ने देखा राजा ने क्या किया, तो उन्होंने श्राप दिया। क्या श्राप दी, 7 दिन के पश्चात क्या हो जाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और राजा घबराया नहीं, राजा ने उसी समय संतों को निमंत्रण दिया, और लगता है कि उस समय कोई सुविधा थी जो आज के SMS से ज्यादा तेज थी, क्योंकि मिनटों में ही 64,000 संत उपस्थित हो गए, 64,000 मिनटों में। और राजा का प्रश्न क्या था, जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे क्या करना चाहिए। तो 10वें स्कंद में परीक्षित महाराज ने कहा, हालांकि मैं व्रत रख रहा हूं, जल भी नहीं पी रहा, आपके द्वारा इस कृष्ण कथा को सुनकर मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मेरी भूख भी समाप्त हो गई और प्यास भी समाप्त हो गई। तो जब आप आध्यात्मिक कार्यों में जुड़े हो तो उसके कारण आप भौतिक भूख और प्यास से बच सकते हो। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया ब्रजवासियों की सुरक्षा के लिए, सारे ब्रजवासी बड़े ध्यान से भगवान के चेहरे को देख रहे थे, और उस समय उन्हें ना भूख लगी ना प्यास लगी किसी पर। तो अगर हम जुड़े हैं भगवान के श्रवणम कीर्तनम की सेवा में, तो आप भौतिक आकर्षण से बच पाओगे। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो एक भक्त को मिले जिनका नाम था रामनंद रॉय। दक्षिण भारत की यात्रा आरंभ करने से पहले सर्वभौमाचार्य ने उन्हें सूचना दे दी थी कि आप दक्षिण भारत में एक बड़े प्रसिद्ध भक्त को मिलोगे, वो भक्त का नाम क्या है, महाप्रभु ने मिले गोदावरी के तट पर वहाँ उस स्थान पर इस्कॉन का भी केंद्र है। महाप्रभु ने अनेक प्रश्न पूछे रामनंद रॉय से। आप कहोगे महाप्रभु तो भगवान है, उन्होंने प्रश्न क्यों पूछे? भगवान भक्तों की महिमा को बढ़ाते हैं, भक्त भगवान की महिमा को बढ़ाते हैं। तो एक प्रश्न ये था जिसका आज के श्लोक से संबंध है, वो ये था, व्यक्तियों को किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और रामनंद रॉय ने उत्तर में कहा, हमें उस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जिसके द्वारा परम भगवान राधा और कृष्णा का गुणगान कर सको। वो है क्या? ये हरे कृष्ण महामंत्र। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हो, इसके द्वारा आप परम भगवान का गुणगान कर रहे हो। और आगे एक प्रश्न था जिसका आज के श्लोक से संबंध है, हमें किस विषय का चिंतन करना चाहिए? क्योंकि जैसे आप सबका अभ्यास है, ये मन सब बड़ा चंचल है। अगर आप मन में आध्यात्मिक भाव विषय को नहीं बिठाओगे तो मन में क्या रहेगा? क्या रहेगा? भौतिक विचार। तो इसलिए महाप्रभु के प्रश्न के उत्तर में रामनंद रॉय ने कहा, हमें भगवान के नामों का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के विग्रह का चिंतन करना चाहिए। कई बार भक्त पूछते हैं, हमें किस विषय का चिंतन करना चाहिए? तो भगवान के नामों का। नामों के विषय में क्या स्मरण करोगे, क्या करोगे? एक भाव है, भगवान अपने नामों से अभिन्न है। भगवान के नामों में इतनी शक्ति है कि अगर हम ध्यान पूर्वक लेंगे तो चेत धर्मं मार्जनं भवं अग्द्वाग्निं निर्वापनम्। आपके हृदय में जो मैल है, जो भौतिक आकर्षण है, वो मिट जाएगा। योगेंद्रनाथ ठाकुर भी अपनी रचना में इसी विषय की स्थापना कर रहे हैं। और ये भक्तों का अभ्यास है, अनुभव है, जो कि ध्यान से नियमित रूप से जाप करते हैं, उनकी जो मैल है रहती है नहीं, पिघलते जाती है। और आपका ये भी अभ्यास है, जिस दिन आप बड़े ध्यान से जाप इत्यादि करते हो, आपका ध्यान में उत्साह ऊंचा रहता है। और जिस दिन आपने आप आलसी बन जाते हो और सुस्त बन जाते हो, तो उस दिन क्या परिणाम होता है? माया के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, भक्ति के प्रति आकर्षण घट जाता है। ये हरे का व्यास है। तो आज इस श्लोक में देवता कह रहे हैं कि अगर आप आपके भक्त कार्य करते समय आपके चरण कमलों का स्मरण करें, आपके नामों को सुने, आपके नामों को उच्चारण करें और चिंतन करें और दूसरों को भी ये ज्ञान दें, ये एक बड़ा सुंदर भाव है, दूसरों को भी ये ज्ञान दें, वो आपको समझ पाओगे। तो इस श्लोक के तात्पर्य के समाप्ति में ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। ये समाप्ति में क्या कहा जा रहा है? One may approach any person and induce him to read Krishna literature so that in the future he also may become a devotee. Such activities are recommended in this verse. Such activities will always remind the devotee of the Lord's lotus feet. by fully concentrating on distributing books for Krishna, one is fully absorbed in Krishna. This is what? Samadhi. What a beautiful Sunday. So here Prabhupada Ji is saying, if you meet any person, उसे कहो कृष्णा का साहित्य पढ़ो तो क्या होगा, उसका जीवन सुधर सकता है. और इन प्रकार के कार्यों के द्वारा परम भगवान के चरण कमलों का स्मरण होता है. और जो व्यक्ति ग्रंथों के वितरण की सेवा में जुड़े हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ क्या कि वो सदा भगवान का स्मरण कर पाएंगे. और इस कार्य को क्या कहते हैं, यह है समाधि. समाधि का ये अर्थ नहीं आंख बंद करके सो जाओ. समाधि का अर्थ है कि आप दूसरों के हृदय में भक्ति की भावना जागृत करो या भगवान की सेवा में जुड़े रहो. तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, इन ग्रंथों के माध्यम से लोगों को क्या देना, ज्ञान देना. और ये जो कार्य है प्रचार का, यह असली समाधि. तो परसों हमने इस हरे कृष्ण लैंड की सालगिरह का उत्सव मनाया था, 42nd. हाँ, तो आपको शायद पता हो कि मंदिर बनने से पहले बहुत सी समस्याएं आ रही थी, क्योंकि जिस व्यक्ति की जमीन थे जमीन थी उसका ये भाव भी था होटल बनाया जाए इधर. तो कई इस बार हम लोग ने एप्लीकेशन दिया, वो रिजेक्ट होते गया. तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, मंदिर बनाने नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसे बस स्टैंड बना हम बसें रखेंगे, ग्रंथों को जाकर बांटेंगे, जब ग्रंथ बिक जाएंगे वापस आएंगे, फिर से भरकर फिर प्रचार में जाएंगे. दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी ने कहा किस लिए, ग्रंथों के वितरण के माध्यम से पतितों का उद्धार हो सकता है. कि क्या कारण है कि इतना बल दिया जाता है इस संसार में ग्रंथों के वितरण की सेवा के लिए, और जो भक्त हैं वो हर प्रकार की सुविधा का लाभ उठाते हैं, सड़कों में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं, विदेश में हमारे भक्त बर्फ में जाते हैं ग्रंथों को बांटने के लिए. केवल एक ही भाव से क्या लोग ग्रंथों को पढ़ेंगे, जीवन को सुधारेंगे. प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, यह है समाधि. असली समाधि है भगवान की सेवा में जुड़े रहना. तो ये महत्वपूर्ण कार्य है. तो ये भाव कि हम सदा भगवान की सेवा में जुड़े रहे, ये भाव केवल जब अनुकूल हो सकता है, जब हम प्रयास करें हमारे हृदय को शुद्ध बनाने के लिए. अगर हम प्रयास नहीं करेंगे शुद्ध बनाने के लिए, फिर भाव नहीं प्रकट होंगे. और इस श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये भी कह रहे हैं कि हमें गुरु साधु शास्त्र के द्वारा वैदिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए. शास्त्र का अर्थ है भगवान की वाणी, धर्मां तु साक्षात भगवत परिधाम. ये नहीं कि आप शास्त्र बना लो हम शास्त्र बना रहे. शास्त्र का अर्थ है भगवान की वाणी. भगवान की वाणी में कोई अपूर्णता नहीं, कोई कमी नहीं। आज भी आप भगवद गीता को पढ़ते हो, आपको ऐसे लगता है कि कल ये संदेश भगवान ने कल ही दिया, और ये संदेश है पूरे मानव समाज के लिए। इसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। आप भागवतम को ध्यान से पढ़ो, और भागवतम को पढ़ने से क्या नस्त प्रेशो बदेशु नित्यम भगवत सेवा भगवती तुम श्लोक है भक्ति भगवती नी। अगर आप ध्यान से भागवतम पढ़ोगे तो हृदय की मैल क्या होगा, निकल जाएगी। और हरिनाम को ध्यान से लोगे तो क्या लाभ होगा, हृदय की मैल दूर हो जाएगी। तो गुरु साधु शास्त्र, साधु जो संत प्रस्तुत हुए हैं, गुरु जो आपको मार्गदर्शन दे रहा है, और गुरु का कर्तव्य क्या, गुरु का कर्तव्य क्या बनता है, वही संदेश दे जो दूसरे साधु ने दिया है। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों में, उनके उपदेश में अब क्या देखते हो, वही उपदेश दिया जो भक्ति सिद्धांत जी ने दिया, उन्होंने वही दिया जो कि ठाकुर भक्ति ने दिया, ये परंपरा। तो हमें गुरु साधु शास्त्र के अनुसार कार्य करना चाहिए। और तात्पर्य में प्रभु जी ये भी कह रहे हैं, मायावादी विचार के लोगों से हमें ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए। मायावादी किसे कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं जो माया में है। तो मायावादी के द्वारा ये समझा जाता है तो भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, जो कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, हमारा रूप है भगवान, लंगड़े हैं, लोग गूंगे हैं। भगवान के पास भी सारे अंग है, और भगवान के जो देह है क्या है, दिव्यम जन्म कर्म चामे दिव्यम, भगवान का प्रकट होना प्रकट होना दोनों ही दिव्यम है। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। एक हाथी को सुई के छेक से निकाल सकते हैं। भगवान की जब दसवें स्कंद की अद्भुत लीलाओं को जब पढ़ते हो तो क्या देखते हो, इन लीलाओं की तुलना कोई कर सकता है? आप मुंह को खोलोगे अंदर बलगम देखेगी, तो भगवान जब मुंह खोलते हैं तो पूरे विश्व का दर्शन मिलता है। भगवान के लिए एक महान पर्वत को उठाना संभव है, वो ये भी नहीं कि दो हाथों से उठाते, एक छोटी उंगली के नाखून के बल पर। तो भगवान को समझने के लिए हमें सेवा के मार्ग में जुड़ना है, और वो सेवा आरंभ होती है श्रवणम और कीर्तनम के साथ। तो हम सब भक्तों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। कई बार भक्त पूछते हैं हम क्या सेवा कर सकते हैं, हम कहते हैं महामंत्र का उच्चारण करो, इसमें रुचि बढ़ाओ। महामंत्र में जब रुचि बढ़ेगी माया में रुचि घटेगी, और जब माया की रुचि घटाना है ये महामंत्र ही उदाहरण है। रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान के नाम तो मीठे हैं पर अविद्या के कारण हम इनका मीठापन महसूस नहीं कर सकते, इसलिए हम भागवत में सुनते हैं तो नींद आ जाती है, जाप करते हैं नींद आ जाती है, पर प्रसाद खाते हुए नींद आती है नहीं, क्योंकि इसमें रुचि है। तो हमें इस अविद्या की बीमारी का इलाज कैसे करना है, ये उपदेश आज के श्लोक में दिया जा रहा है। और क्या है इलाज, श्रवणम कीर्तनम और विष्णु स्मरणम, ये भी महत्वपूर्ण है। ये नहीं श्रवणम कीर्तनम करो और मन द्वारा कुछ और सोचते रहो। प्रभा जी सुनाते थे, एक समय एक वैश्या का घर था और उसके सामने एक ब्राह्मण का घर था। जो वैश्या थी उसका पाप का धंधा था, पर वो सोचती रहती थी मेरे बुरे संस्कार थे कि मैं इस कार्य में जुड़ी हूँ, मुझे भी अगला जीवन उस ब्राह्मण जैसा प्राप्त हो जो हमेशा शास्त्रों को पढ़ रहा है। और जो ब्राह्मण था वो बरामदे में बैठ के लोगों को दिखाता था कि मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, पर मन में सोचता था हाँ उस वैश्या को कौन गिरा गया, क्या हो रहा है। तो उस इलाके में आग लग गई थी जिसमें दोनों वैश्य और ब्राह्मण मर गए। यमदूत आए ब्राह्मण को पकड़ कर नरक में ले जाने के लिए। ब्राह्मण ने कहा आप गलत पते पर आ गए हो, आपको तो वैश्य के पास जाना चाहिए, मैं तो सारा दिन शास्त्र पढ़ते रहता था। तो यमदूत ने कहा हाँ तुम दिखावा कर रहे थे शास्त्र पढ़ने का, पर सोचते रहते थे उस वैश्य के गिराऊंगा। उस और वो वैश्य जुड़ी हुई थी पाप के कार्य में, तो मन द्वारा क्या सोच रही थी मैं कब ब्राह्मण जैसा जन्म लूंगी, चलो तुम नरक में। तो हमें मन द्वारा भगवान का चिंतन करना चाहिए, ये नहीं कि हम पखंडी बने। तो प्रयास करने से हर कार्य संभव हो जाता है। जैसे प्रभुपाद कहते थे अब एक कदम लो भगवान की तरफ, भगवान कितने 10 कदम लेंगे तुम्हारी तरफ। तो संक्षेप में आज के श्लोक में देवता बड़े प्रसन्न है क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान प्रकट होने वाले हैं, देव के घर के घर में है। तो देवता अनेक स्तुतियों द्वारा भगवान का गुणगान कर रहे हैं और आज के श्लोक में वो कह रहे हैं जो आपके भक्त हैं वो अनेक प्रकार के कार्य में जुड़े रहते हैं, चाहे कुछ भी कार्य हो एक चीज वो नहीं भूलते, क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। और ना ही ये खुद ही इसको अपनाते हैं, ये ज्ञान दूसरों को भी देते हैं। ये स्पष्ट है इस श्लोक में, ये ज्ञान दूसरों को भी देते हैं। और जो इस प्रकार की भावना रखते हैं वो भगवान को समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान को समझने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। पवित्र इंद्रियों से आप भगवान को समझ सकते हो। आप किसी भौतिक व्याधि को भगवान की अद्भुत लीलाओं की चर्चा करो, वो कहेगा दिस इज माइथोलॉजी, दिस इज कल्पना, दिस इज इमेजिनेशन, दिस इज नॉट पॉसिबल। जब वो मोची को पता लगा कि भगवान हाथी को सुई के छेक से निकाल रहे थे वो तो खुशी में नाचने लगा। जो मायावादी विचार के ब्राह्मण को पता लगा ये कैसे संभव है, हाथी को कोई सुई के छेक से निकाल सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो भगवान के ऐसे अनेक गुण हैं और इन सब का ज्ञान प्राप्त हो सकता है सेवा के माध्यम से। जिस प्रकार आंखों में जब कैटरैक्ट हो तो आप कैटरैक के कारण देख नहीं सकते, जब कैटरैक का ऑपरेशन हो जाता है तो फिर से देख सकते हो। तो हमारा अशुद्ध हृदय मन बुद्धि को हमने शुद्ध बनाना है, और उसका उपाय क्या है, उसका उपाय इस श्लोक में दिया जा रहा है और भागवतम के हर श्लोक में दिया जाता है। हमें भागवतम को ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। माया का तेज प्रभाव है सच, पर भगवान ने हमें हथियार दिए हैं जिनके द्वारा आप इसका विरोध कर सकते हो। जैसे भगवान कहते हैं देवी से गुना माई माम माया, मेरी माया का विरोध करना बहुत कठिन है, पर मैं प्रभु दे माया में काम, जो मेरी शरीर में आएगा उसका विरोध कर सकता है। भगवान की शरीर में कैसे आना वो उपाय दिया जा रहा है इस श्लोक में हमें। और प्रभा जी क्या कह रहे हैं तात्पर्य की समाप्ति में, जो व्यक्ति ग्रंथों को बांटता है वो क्या है, किस सेवा में है, किस भाव में है, समाधि। तो आप सब भक्त जो कि प्रचार की सेवा में जुड़ते हो, आप सब हो असली समाधि में। और समाधि का अर्थ है सदा भगवान का चिंतन करते रहना, और अगर हम प्रयास करें तो आप सब इसको प्राप्त कर सकते हो, क्या भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हो। और हम सब का उद्देश्य क्या है, हरिनाम में रुचि बढ़ाएं, भगवान के शास्त्र में रुचि बढ़ाएं, कृष्ण कथा में रुचि बढ़ाएं। और अगर इस विषय में रुचि बढ़ाओगे तो अंत में क्या प्राप्त होगा, कृष्ण प्रेम, जो कि प्राप्त होता है भजन क्रिया के द्वारा। हरे कृष्णा। तो प्रश्न है, कोई प्रश्न? यस, it's a little late because today there were two classes.
Hare Krishna Maharaj. धन्यवाद महाराज, बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन गाइडेंस दिया आपने। मेरा प्रश्न है महाराज कि जब हम भक्त लोग प्रारंभ मंदिर में आते हैं, नए भक्त होते हैं, तो हम लोग एक बहुत रजोगुण अपने साथ लेके आते हैं, जिससे हम अगर श्रवणम कीर्तन करते हैं तो हमारा इतना रुचि नहीं होता उसमें और इतना ध्यान से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अभी हमको बहुत मेहनत करनी चाहिए, हमारा जो रजोगुण है भगवान की सेवा में लगाएंगे तो फिर वो कम हो जाएगा और फिर हम जाके श्रवणम कीर्तनम में कुछ स्थिरता या स्वाद टेस्ट ला सकते हैं। जैसे महाराज आपने बताया कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमारा अभी जॉइंटिस ऐसा बीमारी है और जो हम ये तो बीमारी है इसलिए हमें भी टेस्ट नहीं है, लेकिन हम श्रवणम कीर्तनम करेंगे तो फिर उससे टेस्ट आएगा और करेंगे तो फिर उससे टेस्ट आएगा। तो कैसे समझे महाराज हमें क्या करना चाहिए, अगर जो भक्त प्रारंभिक स्तर में आ रहा है उसके अंदर रुचि नहीं है तो खुद से खूब मेहनत करना चाहिए, और या फिर उसको कुछ समय निकाल के पापा जी के ग्रंथ पढ़ने चाहिए और पापा जी के प्रवचन सुनने चाहिए कि बीमारी तो है।
हमें हरिनाम करना चाहिए और ग्रंथों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर आप मंदिर में रहते हो तो भगवान क्लास में आओ, गीता क्लास में आओ, और घर में रहते हो तो भी ग्रंथों को पढ़ो। अगर हम हरिनाम को करें ध्यान से और ग्रंथों को पढ़े और सुने तो बिना शंका के हृदय की मैल निकलते जाएगी। अगर हम कभी माया के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है उसका एक ही कारण है, हम श्रवणम कीर्तन में ढीले हो जाते हैं। जब हम ढीले हो जाते हैं माया एकदम पकड़ लेती है। तो जिस प्रकार आप ये उदाहरण मैंने पहले भी दिया है, आप मान लो स्टेशन में खड़े हो अपने सामान के साथ, अगर एक मिनट भी दूसरी तरफ देखोगे चांस है कोई छूटा रहेगा। तो हमें सदा सावधान रहना चाहिए। ओके, एनी मोर और कोई प्रश्न? More questions? Yes. You can ask questions in English also if you want.
Hare Krishna Maharaj. We read that distributing Prabhupada book is a state of samadhi.
Yeah, very powerful purport.
Yeah. So you also very nicely explained it is how. Sometimes it happens that we are carried away by the thought of competition. So how we can ensure that we...
But the competition is to distribute more books.
Yeah. So will it be counted as samadhi?
Yes. Because you're not competing. Well, the point is, the competition is for the purpose of seeing more books distributed. The competition is not for seeing. I mean, indirectly one may say, oh, I want to distribute more books so I get rewarded better. And that could be a thought. But it doesn't matter, because the real goal is you want books to go out. Even if one is thinking, if I distribute more books, my name will be read out next morning in Mangal Arati, and everyone is going to clap. Doesn't matter. At least the goal is if more books are distributed. It takes time to become a pure devotee. But even if you are motivated, as long as you want the books to go out, it's auspicious. Is that your question? Yes.
Hare Krishna. Maharaj, you were saying in the beginning, Lord told Arjuna, Maa Manusmara Yuddha Cha.
Yeah.
तो हमारा महाराज ऐसे रहता है बहुत बार की सेवा करने लगे तो भगवान का कुछ स्मरण नहीं रहता और उसमें किसी ने कुछ गलती कर दी तो उसको डांट दिया या खुद ऐसे कुछ ना कुछ लोअर नेचर के भाव में चले गए स्मरण तो रहता नहीं भगवान का महाराज जैसे आप बता रहे थे कि भगवान कहते हैं कि मां मनुस्मर युद्ध
हाँ
महाराज आप बता रहे थे कि भगवान का स्मरण भी करना है साथ साथ में सेवा भी करनी है ये तो होता नहीं महाराज सेवा करने लगते हैं तो फिर किसी ना किसी या तो जैसे प्रभु जी ने कहा किसी कंपटीशन में चले जाते हैं या फिर गुस्सा आ जाता है कि ये ठीक से नहीं हुआ या फिर ऐसे कुछ तो कुछ होता रहता है
सेवा इज आल्सो कृष्णा मान लो आप झाड़ू दे रहे हो झाड़ू मार रहे हो मंदिर में आप भगवान के मंदिर में झाड़ू मार रहे हो ना दैट इज ऑटोमेटिकली सेवा You are automatically serving Krishna. Because the seva is not different from Krishna also. Is that your question? Book distribution is samadhi. But any service you're doing for Krishna is transcendental. Somebody may be washing pots. Him is washing pots. He's getting Krishna's mercy.
Maharaj, कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे सेवा कर रहे हैं और अगर उतनी मात्रा में श्रवण या अध्ययन प्रभुपाद जी ग्रंथों का नहीं किया हुआ है या कम किया हुआ है जितना जरूरत है तो सेवा करते समय बुरे विचार भी आ रहे हैं नाना प्रकार के छह अनर्थ भरे हुए
बुरे विचार आए पर आप उनका पालन मत करो और आप अपनी सेवा करते जाओ श्रवणम कीर्तनम करते जाओ तो आप खुद ही एडवांस करोगे प्रभुपाद सेड इग्नोर द माइंड सो इग्नोर मी इग्नोर व्हाट कम्स इन द माइंड गो ऑन चैंटिंग गो ऑन सर्विंग
महाराज माइंड को निग्लेक्ट या इग्नोर करने के लिए भी मेरे अनुभव है कि कुछ शक्ति लगती है या स्पिरिचुअल शक्ति लगती है, वो अगर नहीं है तो फिर चाहे मालूम भी है सारा फिलॉसफी बट फिर भी माइंड को इग्नोर नहीं कर पाते।
राइट, पर वो शक्ति आ सकती है अगर हम दवाई लें। आप बीमार हो, डॉक्टर कहते दवाई लो परहेज कर रखो, हम दवाई नहीं लेते तो बीमारी का इलाज कैसे होगा? तो हमारी बीमारी का इलाज है हमारे पास। इलाज क्या है? 16 माला करो ध्यान से सुबह, भगवतम पढ़ो, गीता पढ़ो, सुनो, भक्तों के संग में रहो। अगर आप इन कार्यों का पालन करोगे तो बिना शंका के इलाज हो जाएगा। इट्स गारंटीड मेडिसिन।
पर जो आप बता रहे थे ये पॉइंट की इस श्लोक में देवी देवता कह रहे हैं कि जो भक्त लोग होते हैं भगवान के, वो कितने भी बिजी हो जाएं, एक चीज भूलते नहीं है, श्रवणम कीर्तनम, और साथ साथ में वो भगवान के बारे में दूसरों को भी बताते हैं। तो मुझे महाराज आप ही का स्मरण आ रहा था कि आप खुद अपने मानी प्रोग्राम में और अपने विग्रहों की सेवा में इतने अद्भुत दृढ़ हैं, इतने सालों से हम देख रहे हैं, और अपने प्रचार में भी दृढ़ हैं। तो महाराज आपसे आशीर्वाद चाहिए कि
सब सब बन सकते हैं। ये बड़ा अच्छा श्लोक है, ये श्लोक प्रचार के लिए भी बहुत अच्छा है। और इस श्लोक के समाप्ति में प्रभुपाद जी कह रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज समाधि।
तुम्हारा हमारे साथ ऐसे हो जाता है कि जब हम सेवा करने लगते हैं तो कभी किसी को यहाँ पर मंदिर में कोई फेस्टिवल आ गया या मैराथन आ गया या और जो हमारी सेवा है उसमें कुछ कभी कोई महत्वपूर्ण समय आता है कोई ऐसा ज्यादा सेवा का, तो बिल्कुल रीडिंग हियरिंग वगैरह सब छूट ही जाता है बिल्कुल, एक हफ्ता दो हफ्ता तीन हफ्ता, जैसे मैराथन में भी एक डेढ़ महीना। तो
मैराथन का मतलब नहीं कि हम माला का जाप में ढीले हो जाए। मैराथन भी आप कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? कृष्ण का उपदेश बढ़ाने के लिए। जैसे आप लोगों ने 2-2.5 लाख गीता अगर बांटी तो बेशक 2-2.5 लाख लोग नहीं पढ़ेंगे, पर कम से कम आधे या 25% तो पढ़ेंगे। तो पर हमें प्रयास करना चाहिए मैराथन में भी थोड़ा तो पढ़े। एनी मोर क्वेश्चंस?
हरे कृष्ण महाराज।
हाँ,
हमारे एक भक्त ऑनलाइन क्लास सुन रहे हैं तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम आध्यात्मिक बारे में लगे हुए हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारा भौतिक आकर्षण बढ़ रहा है, क्या करें?
बढ़ रहा है पर ध्यान मत दो, आप आध्यात्मिक आकर्षण भी बढ़ाते जाओ। ये तो हम जानते हैं कि कलयुग में माया भी दिन ब दिन बलवान होते जा रही है। लुक एट द सेल फोन स्मार्टफोन्स। मैं कई बार ये उदाहरण दे चुका हूँ, स्मार्टफोन्स द्वारा माया का कार्य बहुत सरल हो गया है। पहले आपको सिनेमा देखना होता था तो भाओ जाओ थिएटर में, टैक्सी लो, स्कूटर लो, फिर लाइन में खड़े होकर टिकट लो, ब्लैक मार्केट में टिकट लो। अब तो आपके जेब में जो सिनेमा देखना देख सकते हो। नहीं आप नाइट जुआ खेलना चाहते हो तो कैसीनो में जाके, कैसीनो में भी नहीं जाना, इंटरनेट में कर सकते। हॉर्स रेसिंग करना है वो भी कर सकते हो। आजकल तो आप घर बैठे बैठे हर बुरा काम कर सकते हो। पोर्नोग्राफी देखना है वो भी देख सकते हो। तो एक रूप से कहेगा माया कितना ही आगे बढ़ गया, पर उसके साथ जो असली बुद्धिमान स्मार्ट लोग हैं वो स्मार्टफोन में प्रभुपाद के ग्रंथों को बिठाते हैं, भगवान के विग्रह को बिठाते हैं, वो स्मार्टफोन्स का उपयोग करते हैं और कई लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। सो द चॉइस इज आवर्स। माया इज स्ट्रॉन्ग बट डिवोशनल सर्विस इज स्ट्रॉन्गर। Okay, any more questions? Okay, last question.
Hare Krishna Maharaj. Maharaj, आप ये भौतिक आसक्ति के बारे में बता रहे थे तो इस संसार में अभी हम भक्ति में जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी भौतिक आसक्ति जैसे हमारे माता पिता है तो उनमें भी इतनी आसक्ति है अभी जैसे वो ओल्ड हो चुके हैं तो 60 अप है लेकिन वो थॉट जब आता है कि अभी वो चले जाएंगे तो वो थॉट से ही पूरा शरीर जो है ना कांप जाता है तो इतनी आसक्ति तो यू नो मतलब गृहस्थ हूं मैं तो इतनी पत्नी में भी नहीं है लेकिन जितनी माँ बाप में है तो जैसे भगवान ये है अब भजहुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणा रविंदर है तो जो भक्ति करता है उसके दिल में हृदय में कोई भय नहीं रहता लेकिन मैं इतना आगे तो नहीं हूं लेकिन हृदय तो पूरा भय से भरा हुआ है।
आप ठीक कह रहे हो, आप सच कह रहे हो कि आप भक्ति कर रहे हो पर आप इस समय शुद्ध भक्त नहीं बने, पर आप भक्ति की विधियों का पालन करते जाओ। भगवान गीता में क्या कहते हैं, द वाइज मैन डज नॉट लैमेंट फॉर द लिविंग और द डेड। हम इतिहास को देखते हुए देख सकते हैं सारे पिता माता दादा दादी नाना नानी सब समय के साथ सब जुदा हो जाते हैं, तो उस प्रकार की आसक्ति रखने का क्या लाभ जो आपको पता है आप उससे बच नहीं सकोगे। हमें पता है कि हम माता पिता या किसी को भी रोक नहीं सकेंगे मृत्यु के द्वारा से, है कि नहीं, तो हमें भी असली ज्ञान को समझना चाहिए। गीता में भगवान क्या कहते हैं, आत्मा का ना जन्म है ना मरण है, तो हमें हर चीज को सातवें स्कंद में आप पढ़ते हो जब हिरण्यगर्भ का देहांत हुआ तो उनकी पत्नी और बच्चे बहुत दुखी थे तो हिरण्यकश्यप उनको प्रचार करने गए और हिरण्यकश्यप ने एक कथा सुनाई कि एक समय एक राजा युद्ध में मारा गया था तो उसके जो रिश्तेदार थे पत्नियां थी उनका इतना आकर्षण था कि वो उस शरीर को शमशान घाट ले जाने से रोक रहे थे तो यमराज आए वहाँ बच्चे का रूप ग्रहण करके। यमराज ने कहा ये औरतें इतनी जोर से रो रही है ये सोचिए कि वो अपने मरे हुए पति को जीवित कर सकेंगी। फिर उन्होंने कथा सुनाई आगे, एक शिकारी था और कई पक्षी थे, वो पक्षी को उसने मारा जो पति मेल था और जो मैं पत्नी को पकड़ लिया अपने जाल में और पति ने कहा मेरी पत्नी जाल में फंस गई और ये सोचते सोचते वो भी जाल में फंस गया। तो यमराज ने कहा तुम रो रहे हो इस रोने का क्या फायदा। तो उसी प्रकार आकर्षण है पर हमें ये भी समझना चाहिए ये आकर्षण किसी समय भी टूट सकता है, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए किसी समय भी अंत आ सकता है हम सबका। ठीक है,
ओके महाराज।
डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चन?
वो जल्दी से जानी चाहिए आ सकती।
आप भक्ति की विधियों का पालन करते जाओ आस्ते आस्ते, कीप टेकिंग द स्पिरिचुअल मेडिसिन।
थैंक यू महाराज।
ओके, हरे कृष्णा।